శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం స్వయం రూప కదా మహిమ ద్వైపాయనో విరహకాశ్రయా జిహావ సూత్రేతి తన్మయతయా సర్వోభినేదు తం సర్వభూత విభవం. आज रामचंद्र जी का रामचंद्र जी की आविर्भाव तिथि है. चैत्र का महीना इसमें आज तिथि नौमी, इसको मधुमास भी कहते हैं. इसी मधुमास में रामचंद्र जी अयोध्या के साथ में भूतल पर अवतरित हुए. एक फूल उल नंदिनी फूले तो बेची पर है हुआ के उधर स्वागत करा जाए, किसी पत्नी के फूल दिया जाए वर्षा खिलाड़ी दोपहर जन्म बजा से जा सकती कर देने रामचंद्र जी कृष्ण की जैसे लीला नित्य है, रामचंद्र जी की भी लीला नित्य है. ऐसा नहीं कि भगवान का कोई रूप नहीं है. जब आते हैं तो यहाँ लिंग मनुज अवतार मनुष्य का रूप ले लिया. ऐसा नहीं भगवान का नित्य रूप है जैसे कृष्ण का नित्य रूप है, उनके समस्त अवतारों का भी नित्य रूप है. रामचंद्र जी जैसे कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है, ऐसे उनका नाथ नित्य धाम साकेत अथवा अयोध्या है. इसको कोसलापुरी भी कहते हैं. जैसे कृष्ण जी पर ब्रह्म होने पर भी लोग उनका परिचय पूछते हैं, कहाँ जन्मे, उनके बाप का नाम क्या है, मैया का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, परिचय जागतिक परिचय पूछना चाहते हैं. यद्यपि कृष्ण नित्य है तो भी इसलिए नटलीला के उपलब्धि के अनुरूप मनुष्यों के लिए भगवान की लीलाएं सुबोध और उनकी भावना के अनुरूप हो सके, अधिकार के अनुरूप हो सके, इसलिए भगवान वैसी लीला करते हैं. यदि भगवान अपने आत्मयोग माया से ऐसा न करें तो न तो कोई उनको देख सकता है, न उनकी लीलाओं को देख सकता है, न कुछ समझ सकता है. इसे श्रीमद् भागवत में बताया गया कि योग माया की शक्ति को दिखलाने के लिए मनुष्यों के अधिकार के अनुरूप योग माया के को आश्रय करके भगवान जगत में आविर्भूत होते हैं. अर्थात अपने रूप को प्रकाशित करते हैं. आविर्भूत माने कोई नई चीज नहीं, अपने को प्रकट कर देते हैं और योग माया के संबंध से ही जीव उनको और उनकी लीलाओं को दर्शन करता है, उनको धाम को दर्शन करता है, अन्यथा वो दर्शन नहीं कर सकता. जगत के लोग किसी को देखेंगे, तुम्हारा घर कहाँ है, पिता का नाम क्या है, ये लोगों की भावना होती है. जैसे ठीक है तुम्हारे अनुरूपी जगत में आता है. परिचय दिया कि नंद बाबा का पुत्र हूँ, यशोदा मैया का पुत्र हूँ, और जो और तब तक यह उनके लिए कहा, वसुदेव जी का पुत्र हूं, मैं देवकी का पुत्र मथुरा में रहता हूं, किसी को बतलाए गोकुल में रहता हूं। ऐसे रामचंद्र जी नित्य हैं, कृष्ण ही वो हैं, कृष्ण से सब क्या देखता है, इधर चिंता से नहीं, नीचे हाथ करो अच्छी तरह से सुनो, इधर गमक किस लगा। रामचंद्र जी कृष्ण में ही साधक अपने अधिकार के अनुसार में राम को दर्शन करता है, कृष्ण से अधिक अतिरिक्त कुछ नहीं है। रामादि मुक्तेषु कलानिवतिष्ठन् करोति नानावतार भुवने किंतु कृष्ण स्वयं समौ परम कुमान गोविंदमादि पुरुषम। कृष्ण ही राम के रूप में दिखते हैं अधिकारी के अनुसार। हनुमान इत्यादि जब देखेंगे कृष्ण को तो राम के रूप में देखेंगे। तो ऐसे ये रामचंद्र जी गोलोक में अपने साकेत धाम में अपने परिकरों के साथ में नित्य वहां पर लीला करते हैं। कभी कभी कुछ लौकिक लोगों का कल्याण करने के लिए लौकिक कुछ कारण बना लेते हैं, लौकिक कारण बना लेते हैं, कारण है नहीं उनकी दृष्टि में, कोई भी जगत में ऐसा कार्य नहीं है जिसका कारण नहीं है। सब आदमी साधु का कारण देखता है, किंतु कुछ ऐसे भी अपराधिक चीज है जिसका कारण नहीं है, वो नित्य ही। कृष्ण के भगवान होने का क्या कारण है, कोई कारण है? कृष्ण भगवान ही है और सब काम में कारण खोजा जाएगा, किंतु चित्त संबंध में, चेतन संबंध में, अपराकृत संबंध में कोई कारण नहीं खोजा जाएगा। उसमें यही कहा जाए सर्व कारण कारण, यही सर्व कारण। उसी तरह से रामचंद्र जी के जगत में प्रकट होने का कोई कारण कौन देखता है, जो अनभिज्ञ है सत्य से वो लोग देखते हैं, और अपने भक्तों के लिए विविध प्रकार के चरित्र करते हैं और उन्हीं लीलाओं से असुरों को मोहन करते हैं। जिस लीला से अपने भक्तों को आनंद देते हैं उसी लीला से असुरों को मोहन भी करते हैं, एक ही लीला है। तो वो भगवान रामचंद्र जी नित्य जगत में लीला कर रहे हैं, किंतु कुछ कारण बना लेते हैं जगत में आने का। कारण बनाने में दो तीन प्रधान कारण है। प्रधान कारण है जब जब भगवान देखते हैं कि जीव हमसे विमुक्त हो रहा है, तो उन अधिकारी जीवों को कल्याण करने के लिए, अपनी तरफ में खींचने के लिए, उनको अपने सान्निध्य में लाने के लिए, अपनी लीलाओं के साथ, धाम के साथ, परिकरों के साथ में जगत में आविर्भूत होते हैं, और कोई कारण नहीं। किंतु लौकिक और अतत्वज्ञ लोगों के लिए कुछ कारण बनते हैं। वो कारण क्या है? पहला कारण नारद जी का मोह। नारद जी को कभी मोह नहीं हो सकता। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं कि ब्रह्मा उनके पुत्र हैं, कौन थी? पुत्र और पिता का संबंध ये लौकिक है ना? ये हम अज्ञ लोगों के लिए पिता पुत्र का संबंध दिखला दिया गया। यथार्थता में अपराधिक जगत में पिता और पुत्र का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो अपराधिक दृष्टि से हम विचार जब करते हैं तो जिस किसी भी कल्प में हो नारद जी ब्रह्मा के पुत्र उसमें दिखाई जाते हैं, और अजोनी जी के रूप में, अजोनी जी मानी प्राकृत ये जो सृष्टि होती है जिस रूप में उस रूप में नहीं, अजोनी। जैसे वशिष्ठ जी अत्रि लक्ष्य और सप्तर्षि जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। मन से उन्होंने प्रार्थना की कि आप लोग पधारिए, किंतु जगत में लौकिक आदमी देखता है कि ये इनका पुत्र है तो उनसे छोटा हो गया, किंतु ऐसी बात नहीं। कौन से ब्रह्मा के नारद जी पुत्र हैं, कौन से ब्रह्मा के, कौन वाले ब्रह्मा इस अभी जो चतुर्मुख वाले, अभी कौन सा ये है मनमंत्र तो वो तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंतर्गत। तो अभी जो ब्रह्मा जी चल रहे हैं इनका भी नाम है सर। तो जो पहली सृष्टि हुई होगी वो कौन ब्रह्मा, तो करोड़ों करोड़ों पहले ब्रह्मा वाले, तो उनसे नारद जी मानस पुत्र के रूप में, अर्थात ब्रह्मा जी का अदल बदल होगा उनके रूप का, उनके सब कुछ का, किंतु नारद जी का अदल बदल कुछ नहीं। वो ब्रह्मा जी के प्रार्थना से या भगवान की इच्छा से जगत में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए, इसलिए ऐसा मत समझ लेना जो ब्रह्मा जी से ये कम है। जैसे नंद बाबा के घर में कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण नंद बाबा के पुत्र होकर के उनसे कम हो गए, ये ऐसा माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही नारद जी को साधारण मत समझना, जैसे कृष्ण नित्य हैं राम नित्य हैं वैसे ये नारद जी भी नित्य हैं, जगत के कल्याण के लिए गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए जितने आदि कवि हैं ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी के पिता के गुरु के, व्यास जी के गुरु, प्रहलाद जी के गुरु, ध्रुव जी के गुरु, माने ऐसा कोई बाकी नहीं है जिसके ये गुरु हैं। यदि हम कह दें जो ब्रह्मा जी के गुरु हैं तो सुनने में तो अटपटा लगेगा, खराब लगेगा, किंतु है कि नहीं, तो जिस लीला में ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं उन सब लीलाओं में नारद जी का प्रवेश। हजारों रूप धारण कर सकते हैं कृष्ण की प्रत्येक लीला में, ना अभी ब्रह्मा जी का भी, ब्रह्मा जी को बद्ध जीव भी कहा जा सकता है किसी किसी स्थिति में, अभी कुछ बाकी उनका है नारद जी का। इसलिए नारद जी भगवान की लीलाओं को जगत में प्रकट करने के लिए सब युगों में सब मनमंत्रों में सब ब्रह्मा जी के दिनों में ब्रह्मा की आयु में ये सकते हैं कि उसको है नित्य। तो रामचंद्र जी उनको मोह कैसे हो जाएगा, मोह नहीं। रामचंद्र जी के लीला में जितने आने वाले परिकर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य सिद्ध और एक नैमित्तिक लीला में प्रवेश करने वाले। एक नित्य लीला के परिकर और कुछ ने नैमित्तिक लीला के आधार। नारद जी भगवान की नित्य लीला के परिकर, इनको कभी मूल सद्भाव नहीं हो सकता है। जैसे यशोदा जी को मोह नहीं होगा इनको भी मोह नहीं होगा, इनको मुंह जैसा दिखता है भगवान की लीला जगत में प्रकट करने के लिए, और कोई कारण नहीं। नारद जी बड़े रसिक, उन्होंने देखा जी भाई राम की लीला को इस पृथ्वी पर कैसे अवतरण कराया जाए, ऐसा विचार करके सर्वज्ञ तो है ही है। उन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की कल्पना करके रामचंद्र जी को जगत में लाने की सोची, उन्होंने कहा जिसे थोड़ा सा अज्ञ बनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अज्ञ बन करके ही काम करें। बहुत से काम होते हैं चलाकी से चतुराई अधिक बुद्धिमत्ता से नहीं होता, उसके लिए गुरु जी के पास में जाना चाहिए। तो कैसे जाना चाहिए, खूब बुद्धिमानी सच करके ना, खूब बुद्धिमानी लगा करके तब जाना और समझना जी गुरु जी कुछ नहीं जानते, हम जितना जानते हैं उतना गुरु जी नहीं जानते, और गुरु जी हमारे मन की बात भी नहीं जानते, और गुरु जी जो कहते हैं मैं सब समझता हूँ या सब समझती हूँ, ऐसा समझ में आता है ना, जो हम जो कुछ समझते हैं उससे अधिक नहीं समझते, हम बड़े बुद्धिमान उनके पास में जाएंगे। किंतु ऐसा मत समझना चाहिए, भूल करके भी जीवन में मत समझना, तो फिर वो कुछ वो ऐसे ठग हैं, तुम उनको एक पैसे का ठगने जाएगा या जाएगी, और वो क्या करेंगे, नित्य काल के परमार्थ से ही उसको ठग देंगे। इसलिए उनसे चतुराई चलाती और उनकी ऊपर में नहला के ऊपर में दाला मत चलाना कभी भी। तो नारद जी साधारण व्यक्ति नहीं, इसका भी गुढ़ रहस्य है जो कहा गुढ़ रहस्य है, अपने अपने समझ लेना, साधारण मत समझना, परमार्थ इतना छोटा नहीं। तो नारद जी अज्ञ बन करके जान कर भगवान की लीलाओं को प्रकाश करने के लिए बुद्धिमान बन करके नहीं। इसलिए एक दिन पिताजी के पास में गए और बोले आज तो मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया और मेनका उर्वशी को भी मैंने परास्त कर दिया, मैं आज भजन कर रहा था समाधि में था तो कोई रूप नुकरों की आवाज आई, आंख खुला देखा पेड़ों पर आम के वृक्षों पर कोयल बोल रही चुहक रही, प्रसन्न तरी से छाया हुआ है, राम मनमोहन मौसम देखा, पेड़ों पर सब मंजरी और फूल से सब खरा हुआ है, सुंदर सो पचपनी प्रवाहित हो रही है, जितनी भी काम के काम को उत्पन्न करने के लिए वातावरण हो सकता है उतना सुंदर से सुंदर मनमोहक। महुआ का फूल जानता है कितना सुगंध होता है, ताजा जैसे गिरे ना और उसके ऊपर में बड़ा सुगंध होता है,
बहुत दूर तक फैला,
और उसको यदि कोई खा लेते हैं तो लोग
मतवाला
हो जाते हैं, उससे मत बनता है। ये सब कामदेव के अस्त्र हैं, और उसी ने मेनका को देखा नृत्य करते हुए, उर्वशी को देखा, देख करके हंस मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा देने के साथ ही साथ में अनंग कामदेव शंकर जी को देख करके हम तो भड़क गए और जला देने की चेष्टा की, अर्थात हमसे पराजित हो गए, हम जो चाहते थे वही काम हुआ, इनके अंदर में क्रोध भड़का दे या उनको गिरा दे तो हो गया क्रोध भड़क गया, और जी मुस्कुरा करके रह गई तो ये तो शंकर जी से भी कम नहीं, उनके चरणों में गिर पड़े क्षमा मांग करके चले। नारद जी को ये क्षोभ हुआ, सोचा जैसे मैं तो ब्रह्मा और शंकर से भी बड़ा हो गया, हमारे अंदर में तनिक भी कोई कामना ही नहीं, चित्त शुद्ध ही नहीं हुआ, शंकर जी इतना शुद्ध हो गया और उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके उसे जला दिया तो इनके अंदर में कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर जी हुआ कुछ हो बल्कि और ठहर गए, उसका कल्याण कर दिया, तो इसलिए कुछ हुआ तो प्रभुता पाई काह मद नहीं, किंतु इतना बड़भारी शक्ति को पा करके मद होना तो स्वाभाविक है। हम थोड़ा सा पाठ करने की कला आ जाती है, सुंदर कीर्तन करने की कला आ जाती है, कुछ भिक्षा की कला आ जाती है, कुछ नए कपड़े पहन लेते हैं, नए कपड़े अच्छे अच्छे रंग तो देखते हैं, देख लेते हो जाता है, स्वाभाविक रूप में होगा। केशव श्रृंगार कर लिया, पुराने कपड़े में नहीं होगा, किंतु उसमें कुछ न ऐसा कोई है नहीं जो नहीं हो बद्ध जीव में। नारद जी को किंतु नहीं है, किंतु जगत के लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा उन्होंने किया। उसे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। पिताजी के पास में गए, प्रणाम किया। पिताजी ने देखा जी आज बड़ा बड़ी श्रद्धा के साथ ही प्रणाम कर रहा है, क्या बात है, सब कुशल है, तो आपकी कृपा रहे और कुशल न रहे। आपकी बड़ी कृपा है, शंकर जी जिसमें हार गए, ब्रह्मा जी हार गए और लोग हार गए, यहां तक कि कर्दम ऋषि इत्यादि भी फेल मार गए। कर्दम ऋषि को जानता है ना, कर्दम ऋषि कौन है, भगवान के अवतार हैं, फेल मार गए और सब लोग ब्रह्मधर लोग ज्ञानी मुनि, और मैं आपकी कृपा से ही मुझे अंदर से कोई क्षोभ ही नहीं हुआ, किंतु उनको पता नहीं कि कुछ क्षोभ तो आ ही गया, क्या आया अभिमान, वो तो नहीं आया किंतु अभिमान आया, ये उससे कम नहीं है। ये अभिमान काम के उद्रेक होना और ये अभिमान का आ जाना, दोनों में कौन बड़ा है, अभिमान वाला बड़ा है, वो बल्कि दब जाएगा, किंतु ये बड़ा भारी मुश्किल है। प्रतिष्ठा की भावना, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ त्याग हो जाएगा, किंतु प्रतिष्ठा की भावना अंदर से कभी पूछती नहीं है। पिताजी को कहा आपकी कृपा रही, मिनका उदसी और कामदेव सब असफल हो गए और मैं जैसा कैसा ऐसा बैठा रहा। ठीक है, किंतु शंकर जी को मत कह देना, गुरु जी को कहे इतना सुसंवाद और इतनी प्रतिष्ठा की भावना, मैं उनसे न कहूं तो किससे कहूं। पहुंच गए उनके यहां, उनसे भी कहा, उन्होंने कहा जैसे विष्णु से मत कहना, तुम्हारे आराध्य हैं उनसे मत कहना, किंतु वो कहा मान, बस उनके पास नहीं चले गए। उन्होंने बड़े आदर से लाभ प्यार से उनको बैठाया, कैसे आना हुआ, तो यूं ही आपका गुणगान करते हुए आज आपकी भक्ति की इतनी महिमा है, आपके नाम की इतनी महिमा है कि काम काम कुछ भी रोग हृदय रोग नहीं रहता। तो वो तो प्रभु समझ गए घाव हो गया है, अब ये सड़ने वाला है, तीव निकालना है, और नहीं तो ये क्या कर देगा, भगंदर कर देगा, अभी मर जाएगा। तो इसलिए भगंदर होने के पहले ही इसको ठीक कर देना ऑपरेशन से। अभिमान यदि थोड़ा सा आ गया और थोड़ा सा प्रवेश कर गया, वो अभिमान बढ़ते 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 भगवत भक्ति से निश्चित कर देगा, इसलिए खुद हल करके चलना चाहिए किसी तरह का भी। एक तो अभिमान करने लायक कुछ है ही नहीं है नारद जी के अंदर में, और उन लोगों के अंदर तो कुछ है भी है, हम लोगों के अंदर में अभिमान लायक कुछ भी नहीं, न रूप है न गुण है न भक्ति है न ज्ञान है न सत्व ज्ञान है, कुछ भी नहीं। माया के झपड़ों से कहां इधर उधर ढोल रहे हैं, पर माया कब क्या कर दे। प्रभु ने देखा जी उसका इलाज कर दिया, बहुत समझ गए सब।
नारद जी उनका गुणगान करते हुए फिर चले गए। कहिए कुछ आकांक्षा कुछ नहीं, बस आपकी कृपा ऐसी बन गई। ठीक। और वहां से जो ही भूतल में आए और देखा एक स्वयं वर लगा हुआ है, बड़ी सुंदरी कोई लड़की है किशोरी। बस सभा में चले गए, सभा में जब चले गए तो देखा राजा के पास में लड़की बैठी है। देखते ही महाराज उठे और उनका अभिवादन करके अपने पास में बैठा है। तो जो लड़की का मैं संवर कर रहा हूं, जरा इसका हाथ तो देखिए। बस क्या था, बस हाथ देखने बैठ गए, हाथ देकर के लुप्त हो गए। विश्व ब्रह्मांड का पति इसका पति होगा। और जिसको ये वर्ण करेगी वो संसार का पूज्य बनेगा। और वो सब चीजें सब देखा सौभाग्य साक्षात लक्ष्मी जी है, ये भी देखा जिसमें उसमें जो गुण होना चाहिए।